الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه، وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو کل ہم نے آیت نمبر 58 اور 59 کا ترجمہ پڑھ لیا تھا، ترجمے میں ہی کافی ساری بات ہو گئی تھی. اب ہم خلاصہ تفسیر ان کا پڑھنا شروع کر رہے ہیں. تو معروف قرآن پیج جلد نمبر 6، پیج نمبر 278، خلاصہ تفسیر میں، جو کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بیان القرآن سے لی جاتی ہے یہاں پر، تو اس میں فرماتے ہیں کہ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، کے اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں، یعنی دین کے حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں کا مطلب کل بھی کافی تفصیل سے اس کے اوپر بات ہو گئی تھی کہ دین کی حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی کس کے دین کی؟ اللہ کے دین کی حفاظت نہیں، اللہ کا دین اللہ خود حفاظت کرتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، ہے نا، اپنا دین، یعنی وہ خود دین کے اوپر چل پائیں، اور اس کے بعد اپنی اولاد کے دین کی حفاظت کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں حکم کیا ہے؟ قو انفسکم و اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ. تو خود ہم اور ہمارے اہل و عیال جہنم سے کیسے بچیں گے؟ دین کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، دین پہ عمل کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے طریقے کے اوپر عمل کریں گے تو جہنم سے بچیں گے، ورنہ جہنم سے نہیں بچ سکتے، ٹھیک ہے. تو دین کی حفاظت کا مطلب کیا؟ کہ اپنے دین کی حفاظت، اپنے آل و اولاد کے دین کی حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے. اور باقی جو دنیا کا دین ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے لیے اپنے خاص بندوں کو استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے کہ رسول کو اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں، رسول جو ہے پھر مسلمانوں کو حکم کرتے ہیں کہ بھئی دین کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ جہاد کرو. اسی طریقے سے رسول کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ کہ جو دین کے بڑے ہوتے ہیں، علماء کرام، مشائخ عظام، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے دین کی حفاظت کرتا ہے. کیا مطلب؟ ان کے ذریعے سے کن کے دین کی حفاظت کرتا ہے؟ اوور آل امت کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اوور آل امت کے دین کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو استعمال کر کے جو رسول ہوتے ہیں یا جو رسول کے نائبین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، علماء اور مشائخ رسول کے نائبین ہوتے ہیں. لیکن میں اور آپ، ٹھیک ہے نا، جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نائبین رسول کے مقام کے اوپر نامزد نہیں کرتا، فائز نہیں کرتا، جو کہ اللہ کا ایک نظام ہے کسی کو فائز کرنے کا، ٹھیک ہے، وہ ایک نظام ہے، ایک الگ تفصیل ہے کہ وہ کیسے فائز ہوتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، وہ خود سے نہیں فائز ہوتے، اوپر سے فائز کیا جاتا ہے. تو جب تک فائز نہیں کیا گیا، جب تک اس مقام کے اوپر آپ کو بٹھایا نہیں گیا، اس وقت تک ہم کس کے دین کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں؟ اپنی ذات اور اپنی آل و اولاد، ٹھیک ہے، ہم سب کے سب، اور یو ایچ اینڈ ایوری ون آف اس، ٹھیک ہے نا، سب کے سب، کوئی اس میں ایکسیپشن نہیں ہے. ہاں، جن کی اولاد نہیں ہے تو کم از کم اپنی جان تو ہے نا بھائی، اپنی، یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کے پاس اپنی جان بھی نہیں ہے. اولاد تو سب کے پاس نہیں ہوتی، شادی نہیں ہوئی تو ابھی اولاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے شادی ہوئی ہو لیکن اللہ نے ابھی اولاد نہیں دی، اپنی جان تو ہے نا بھائی، ٹھیک ہے. تو ہجرت کس لیے؟ دین کی حفاظت کے لیے. اپنا وطن چھوڑا انہوں نے، ٹھیک ہے، جن کا ذکر پچھلی آیت میں بھی الذین اخرجوا من دیارہم کے الفاظ سے آ چکا ہے، وہ تفصیل ہم کر چکے ہیں کہ صحابہ کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا گیا وہاں سے. کیسے نکالا گیا؟ دھکے دے کے نہیں نکالا گیا، بلکہ ان کو دین پر عمل کرنے سے، اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے روکا گیا، اور یہ ان سے برداشت نہیں ہو سکتا تھا،
نبی علیہ السلام سے یہ چیز کے لیے یہ چیز بالکل ایکسیپٹیبل نہیں تھی کہ اللہ کے حکم پہ عمل نہ کریں. تو اس مقصد کے لیے انہوں نے کیا کیا چھوڑا, ذرا اگر آپ ایز اے ریویژن بتا دیں کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے کیا چیزیں چھوڑی. ٹھیک ہے, آپ کے ذہانت اور آپ کی یادداشت کا امتحان لینے کے لیے کوئز ہوتا ہے ہماری کلاسوں میں اس طرح سے بھی. ٹھیک, تو کیا کیا چھوڑا تھا؟ ایک تو یادداشت اور ذہانت دونوں. مکہ مکرمہ چھوڑا, ماشاء اللہ انہوں نے جواب دیا, مکہ مکرمہ چھوڑا. اچھا, اپنا خاندان چھوڑا, صحیح جواب. ٹھیک ہے نا, اور کیا چھوڑا خاندان کے علاوہ؟ ہاں ٹھیک ہے, اپنا خاندان چھوڑا, جس میں اور اپنا گھر بھی تو چھوڑا بھائی, کسی گھر میں ہی رہتے تھے نا, سڑکوں پہ تو نہیں رہتے تھے. ٹھیک ہے, گھر چھوڑا اپنا, ٹھیک ہے نا, اور مکہ مکرمہ کی گلی کوچے جس سے کہ انسان کو محبت ہو جاتی ہے, جہاں پہ وہ پیدا ہوتا ہے, پلا بڑا ہوتا ہے, وہ بھی چھوڑ دیے. اور یہ تو ہوتی ہیں دنیاوی چیزیں جن سے ہر انسان کو تبھی محبت ہوتی ہے, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف دنیاوی چیزیں نہیں چھوڑی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دینی چیز بھی چھوڑ دی. ٹھیک ہے نا, کعبۃ اللہ خالصتاً دینی چیز ہے. یہ نہیں کہ بھائی وہ کعبۃ اللہ کی دیواریں اچھی لگتی ہیں, مجھے اس کا کلر بڑا پسند ہے. ہماری چھوٹی بیٹی جو ہے نا, وہ کہتے ہیں آپ کو کون سا کلر پسند ہے, مجھے تو بلیک کلر بہت پسند ہے کیونکہ کعبۃ اللہ کا کلر بلیک ہے. اب خیر وہ الحمدللہ اللہ کے گھر کی نسبت سے بھی یہ بات کر رہی تھی, لیکن بول سکتا ہے نا کسی کو بھائی کلر پسند آ جائے, کسی کو ڈیزائن پسند آ جائے کعبۃ اللہ کا, تو اس وجہ سے کعبۃ اللہ اچھا لگتا ہے. نہیں, کعبۃ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے ڈیزائن اور اس کے کلر کی وجہ سے اچھا نہیں لگتا تھا, اللہ کے گھر کی وجہ سے اچھا لگتا تھا. تو اللہ کے حکم کی وجہ سے اللہ کے گھر کو بھی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا, اور اس کے اوپر ہم نے باقی بھی کچھ باتیں کری تھیں اس والی کلاس کے اندر. تو یہ جو تھا کہ اس آیت میں بھی آ چکا ہے, اس کا ذکر الذین اخرجوا من دیارہم کے الفاظ سے آ چکا ہے. پھر وہ لوگ کفار کے مقابلے میں قتل کیے گئے یا ویسے ہی طبعی موت سے مر گئے. ٹھیک ہے, یعنی ثم قتلوا او ماتوا, ماتوا کا مطلب وہ مر گئے. اب جو طبعی انسان کی ایک جب وقت آتا ہے تو وہ مر جاتا ہے, تو وہ ناکام و محروم نہیں گو ان کو دنیاوی فائدے نہ ملے. ٹھیک ہے, یعنی کیا مطلب کہ فتح مکہ سے پہلے مر گئے. کس وقت سے پہلے مر گئے؟ فتح مکہ. فتح مکہ کا وقت کیا تھا؟ فتح مکہ کے بعد سارے کے سارے دنیاوی فائدے مل گئے. کیا وہ سب کے بینک بیلنسز کے اندر ملین ڈالرز آ گئے تھے فتح مکہ کے بعد؟ نہیں, بلکہ فتح مکہ پہ کیا ہوا تھا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. ٹھیک ہے نا, رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, رائٹ. کہ فتح مکہ پر کیا ہوا تھا؟ ان لوگوں کے بینک بیلنسز نہیں بھر گئے تھے, بلکہ فتح مکہ پہ کیا ہوا تھا؟ جس مقصد سے یہ ان کا جینا مرنا, جس مقصد کے لیے ڈیڈیکیٹ ہو چکا تھا, وہ مقصد جو ہے نا وہ حاصل ہو گیا. کیا مقصد تھا؟ کہ خود بھی دین پہ قائم ہو جائیں اور اللہ کے بندے بھی دین کے اندر جوق در جوق داخل ہو جائیں, جوق در جوق, فوج در فوج اسلام میں داخل ہو جائیں. یہ والا مقصد جو ہے وہ فتح مکہ کے بعد حاصل ہو گیا, اس سے پہلے حاصل نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے, تو اس سے پہلے کتنے صحابہ دنیا سے چلے گئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نا, جو یعنی سید الشہداء, اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے کتنا بڑا کام کیا تھا مدینہ منورہ کو آ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تیار کیا تھا, اور کیسے کیسے صحابہ جو ہیں وہ they could not see the light of the day, جو انگریزی کا محاورہ ہوتا ہے نا, وہ فتح مکہ والا دن وہ دیکھ ہی نہیں سکے. کیا وہ ناکام ہو گئے؟ کیا ان کو ریزلٹس نظر نہیں آئے دنیا میں؟ they did not live enough to ریزلٹس کو انجوائے کرنے کے لیے وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے. ٹھیک ہے, نہیں, بلکہ مگر آخرت میں, ٹھیک ہے نا, وہ ناکام و محروم نہیں ہوئے, گویا کہ ان کو دنیاوی فوائد نہ ملے, مگر آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ایک عمدہ رزق دے گا. لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا. ٹھیک ہے, تو دنیا کا رزق ہی واحد رزق نہیں ہوتا, بلکہ آخرت کا رزق جو ہے وہ تو سب سے اچھا رزق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں, جس کے ساتھ اگر ہم جڑیں گے, اگر ہم قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے, تب ہمیں یہ ساری کی ساری باتیں سمجھ میں بھی آئیں گی اور یاد دہانی بھی ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے نا, तो हम तो या तो बिल्कुल ही नहीं जुड़ते, या अगर जुड़ते भी हैं तो सिर्फ तिलावत की हद तक, जो कि हमें समझ में कोई नहीं आ रहा होता हम क्या पढ़ रहे हैं। तो अरबी जुबान का जो सीखना है ना, अरबी जुबान का सीखना ये बुनियादी नॉलेज, बुनियादी इल्म है एक एक, एक मुसलमान के लिए। ये वो नहीं है कि हाँ भाई मैं आलिम दीन बनना तो सबके ऊपर वाजिब नहीं है, तो इस वजह से अरबी जुबान तो आलिम दीन सीखते हैं, मैं क्यों अरबी जुबान सीखूं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आलिम दीन बनने के लिए अरबी जुबान सीखना, नहीं, बल्कि एज अ मुस्लिम, मुसलमान की हैसियत से आपको कायम रहने के लिए, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सरवाइव करने के लिए, अरबी जुबान का इतना इल्म कि कुरान मजीद समझ में आ सके, कम अज कम कुरान मजीद समझ में आ सके। और जाहिर कुरान मजीद समझ में आएगा तो हदीस मुबारक भी समझ में आएगी, इतनी अरबी से जो है हदीस और कुरान मजीद समझ में आ जाता है, ठीक है, जितनी कि एक बुनियादी अरबी की का इल्म है, ठीक है। तो इसके लिए जो है ना वो हम सबको मेहनत करनी है, आलिमा बनने के लिए नहीं, आलिमे वो आलिम दीन मौलाना साहब बनने के लिए नहीं, वो जिसको अल्लाह ताला मौका दे, महल दे, उसको तौफीक दे, सलाहियत दे, वो बने बेशक, लेकिन हर कोई नहीं। अरबी जुबान के बगैर काम नहीं हो सकता। उसी तरीके से जो औलाद वाले हैं यहाँ पर, वो इस बात को कन्विंस हो जाए, उसके ऊपर कुछ किसी कुछ कर जाए, कुछ घोल के पिला दें, आपको क्या कर लें, जिसके आप कन्विंस हो जाएं कि अपनी औलाद को अरबी जुबान के बगैर मुमकिन नहीं है कि आपकी औलाद जो है वो आप उसको तालीम दे सकें। ये अंग्रेजी की बुनियाद पर, और अगर कुछ लोगों को उर्दू जुबान सिखाना या कोई और अपनी इलाकाई जुबान सिखाना, ये होता है ना भाई, तालीम के अंदर कोई कॉन्सेप्ट है कि अंग्रेजी सिखाए बगैर आप तालीम हो जाएगी, है ना, अंग्रेजी के बगैर तालीम हो जाएगी, कभी आपने सोचा इस तरह से? या अगर उर्दू मीडियम में है तो उर्दू के बगैर तालीम हो जाएगी? नहीं भाई, उर्दू इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, अंग्रेजी जो है ना वो कंपल्सरी सब्जेक्ट है ना, अरबी क्यों नहीं है भाई कंपल्सरी सब्जेक्ट, राइट। वही शहीद जनरल मोहम्मद जियाउल हक साहब की बातें पिछले दिनों भी हुई थी, तो जनरल मोहम्मद जियाउल हक साहब जो है ना वो आए बेचारे, उन्होंने वही अपनी कोशिश, क्योंकि उनका ताल्लुक जो है वो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा के साथ बहुत गहरा ताल्लुक था। उनका अपना निकाह मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाया था, जियाउल हक का निकाह मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ाया था, और उनकी बेटी और बेटों का निकाह हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के दूसरे खुलफा ने पढ़ाया था। ऐसी कोई थोड़ी, यानी बहुत गहरा ताल्लुक था उनका। तो ऐसे शख्स ने आकर के कोशिश करी कि पाकिस्तान के अंदर अरबी जुबान की तालीम जो है ना वो कंपलसरी हो जाए, लेकिन जब उनका जहाज धमाके में पट गया, है ना, वो ऐलान इसी तरीके से होता, हमारे महबूब जनरल मोहम्मद जियाउल हक का जहाज धमाके में पट गया, उसके बाद फिर वही खत्म हो गया सारा का सारा। क्यों खत्म हो गया भाई? इसलिए कि नीचे लोगों में वो तड़प नहीं थी, नीचे के जो लोग थे ना, अवामुन नास, ग्राउंड लेवल के ऊपर लोगों में ये तलब नहीं थी, ऊपर वाले को अल्लाह ने उठा लिया, खत्म हो गया सारा मामला। वरना जब हम उस जमाने में स्कूल में थे तो मुझे याद है कि 8th क्लास में जब पहुंचे ना, तो जी हुकूमत की तरफ से ऑर्डर आया है अरबी जुबान भी आपके निसाब में दाखिल कर दी गई है। तो हमने जो है ना वो हाजा कलबुन और हाजा कित्ततुन, ये दो चार जुमले पढ़ लिए थे 8th क्लास के अंदर जाकर के, ठीक है। तो अरबी जुबान के बगैर ना बहैसियत मुसलमान सर्वाइवल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप अरबी नहीं पढ़ेंगे, अरबी नहीं से सीखेंगे, तो कुरान मजीद तोते की तरह पढ़ रहे होंगे, ठीक है, सवाब मिल रहा होगा, अल्लाह पता नहीं सवाब भी जो है उसके भी, उसके पीछे भी तो कुछ चीजें होती हैं, सवाब के लिए भी कुछ कंडीशन होती हैं, ऐसे कोई थोड़ी कोई काम करना शुरू कर दिया तो सवाब भी मिलना, तो तिलावत कर रहे हैं तो सवाब भी मिल रहा है, राइट भाई। सवाब के लिए कुछ कंडीशन हैं, ठीक है, समझना कंडीशन नहीं है सवाब मिलने के लिए, एक हर्फ पढ़ने से जो है वो सवाब 10 नेकियों का सवाब मिलता है, हदीस से साबित है बात, ठीक है। लेकिन और भी कंडीशन, नियत, नियत की कंडीशन होती है सवाब के लिए, सुन्नत के तरीके की कंडीशन होती है सवाब के लिए, ठीक है ना। तो तिलावत करने से सवाब का भी कुछ कंफर्म नहीं है, पता नहीं मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है, नियत है, सुन्नत है, क्या है, तो पढ़ भी रहे हैं सही कि नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन जो रिमाइंडर्स हैं, जो हकीकतें हैं अल्लाह के बारे में, जन्नत जहन्नम के बारे में, दीन के बारे में, ये तो तिलावत से नहीं आती ना। अगर सवाब मिल भी गया तो ये हकीकतें तो तिलावत से नहीं आती ना, ठीक है। तो अरबी जुबान ये यानी कंपलसरी से भी ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग वर्ड हो तो उसको इस्तेमाल करना इसके लिए लाजमी है। पिछले दिनों हमने एक बहुत बड़े आलिम दीन है इंडिया के, मौलाना सज्जाद उमानी साहब, उनका जो छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर किया, तो वो तो इस लेवल के ऊपर है कि हम उनकी बात को डिनाई नहीं कर सकते, क्या फरमाते हैं कि जो कुरान सीखने की कोशिश नहीं करता है, समझने की कोशिश नहीं करता है, ये गुनाहे कबीरा, आम गुनाहे कबीरा से ज्यादा बड़ा गुनाहे कबीरा है। राइट, इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो ऐसे कोई झोल वाला जुमला नहीं कहते, कुछ पीछे है इसके हकीकत, इसी वजह से उन्होंने ये बात कही ना। ठीक है जी, आपने भी माशाल्लाह 6 to 8 क्लास पढ़ी, हम वो 8 तक पहुंच चुके थे शायद जब जब वो अरबी आई थी, आप वो 2-3 साल पीछे होंगे हमसे। बहरहाल तो फरमाए के यानी जन्नत की अल्लाह ताला उनको जरूर एक उमदा रिस्क देगा, यानी जन्नत की बेशुमार नेमतें। ठीक है, यानी रिस्क जो है ना वो सिर्फ दुनिया का रिस्क नहीं होता, अगर सिर्फ दुनिया का रिस्क रिस्क होता तो फिर कितने सहाबा रिस्क के बगैर ही दुनिया से चले गए, रिस्कन हसना के बगैर ही चले गए, है ना, ऐसा तो नहीं हुआ ना भाई। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि आखिरत का रिस्क, मुसलमान की कामयाबी, आखिरत की कामयाबी, दुनिया में मिले या ना मिले, ये बजायर हमें ये किंडरगार्टन लेवल की बात लगती है, ये तो भाई तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली हमारे एक अंकल ऑब्वियसली बोला करते थे, ठीक है ना, तो ऑब्वियस नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है, ये ऐसी चीज है जो कि हमारे जहनों से इतना तेजी से निकलती है कि जितना तेजी से जो है ना वो शायद ऊंट भी नहीं भागता हो, है? वो जो नबी रसूल ने फरमाया ना कि कुरान को बांधो वरना वो भाग जाता है, ठीक है ना, जिस तरह ऊंट जो है वो अगर उसको नहीं बांधो तो ऊंट भाग जाता है, ये वाली जो चीज है ना कि दुनिया का की सक्सेस इज नॉट सक्सेस, ठीक है ना, या इज नॉट द ओनली सक्सेस, बल्कि आखिरत की सक्सेस, आखिरत की कामयाबी ही कामयाबी है, ये तो इससे भी ज्यादा, तो यानी बुलेट ट्रेन की भी स्पीड से ना हमारी जहन से निकलती है बात, क्योंकि हर वक्त हमें इस तरह की चीजों से वास्ता पड़ता रहता है और हम जो है ना वो दुनिया की कामयाबी के ही बुनियाद पर टटोलते रहते हैं चीजों को, अपने आप को भी दुनिया की कामयाबी के बुनियाद पर जज करते हैं कि हमने अच्छा काम किया बुरा काम किया, और दूसरों को भी दुनिया की कामयाबी के बुनियाद पर जज करते हैं कि उसने अच्छा काम किया बुरा काम किया, ठीक है ना। आखिरत की कामयाबी, और आखिरत की कामयाबी कैसे भाई, हम कैसे जज करेंगे किसी को कि आखिरत काम की कामयाबी वाला काम किया कि आखिरत की कामयाबी वाला काम नहीं किया, दुनिया की कामयाबी तो आंखों से नजर आ रही होती है ना, तो इस वजह से हम देख लेते हैं अच्छा इसको दुनिया में कामयाबी मिली इसका मतलब इसने बड़ा सही काम किया, इसको दुनिया में नाकामी मिली इसका मतलब इसने बड़ा गलत काम किया। आखिरत की कामयाबी और नाकामी का कैसे पता चलेगा, आखिरत तो हमारी आंखों के सामने है ही नहीं, तो जी इसका क्या जवाब है, आखिरत तो हमारी आंखों के सामने नहीं है, तो फिर आखिरत की कामयाबी अगर असल कामयाबी है तो हाउ टू वी डिसाइड कि अच्छा ये बंदा आखिरत की कामयाबी वाला काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मैं आखिरत की कामयाबी वाला काम कर रहा हूं कि नहीं कर रहा, हाउ कैसे ये डिसाइड करेंगे आखिरत जिसकी अच्छी होगी, सोच समझ के जरा जवाब दिया करें, मतलब सवाल तो समझे ना पहले, सुन्नत तरीके से जो करेगा, ठीक है ना, आखिरत की कामयाबी का हम फैसला कैसे करेंगे कि मैं आखिरत की कामयाबी वाला काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, कैसे फैसला करेंगे, उसको अल्लाह के हुक्मों के इल्म के ऊपर जज करेंगे, हमारे पास अल्लाह के हुक्मों का जो इल्म है, अल्लाह का हुक्म क्या है, क्या मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काम कर रहा हूं या अल्लाह के हुक्म के खिलाफ काम कर रहा हूं, अगर मुताबिक काम कर रहा हूं तो आखिरत की कामयाबी वाला काम कर रहा हूं, अगर उसके खिलाफ काम कर रहा हूं तो आखिरत की कामयाबी वाला काम नहीं कर रहा, ये है जज करने का तरीका, ये बीइंग जजमेंटल वाले अंग्रेजी मुहावरे के अंदर इसको नहीं लपेट दिएगा, why are you being judgmental? ये वाला मुहावरा नहीं चलेगा, ठीक है ना, सीधी सीधी बात है, हमने अपना फैसला करना है मैं कौन सा काम जो है वो सही कर रहा हूँ कौन सा काम गलत कर रहा हूँ, नॉट वॉट आई लाइक टू डू, वॉट मेक्स मी फील गुड, नो, शरीयत के अंदर क्या हुक्म है, अगर मैं उस हुक्म को पूरा करने की इखलास नीयत अल्लाह की रजा की नीयत के साथ मेहनत कर रहा हूं, इसका मतलब है कि आखिरत की कामयाबी की मेहनत कर रहा हूं, और अगर मैं अल्लाह के हुक्म को पूरा करने की इखलास नीयत के साथ मेहनत नहीं कर रहा बल्कि किसी और के हुक्म को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं, या अल्लाह के हुक्म को बगैर इखलास के पूरा करने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब यह है कि आखिरत की कामयाबी का काम नहीं कर रहा, ठीक है ना, ये है क्राइटेरिया, दिस इज हाउ वी जज, ठीक है ना। दुनिया की कामयाबी तो भाई कानों से सुनाई भी दे देती है, आंख से नजर भी आ जाती है, राइट, और लोगों की वाहवाह भी जो है वो उससे भी पता चल जाता है, अच्छा जी हाँ ये तो दुनिया में कामयाब हो गया है शख्स, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। जी, इफ वी आर फॉलोइंग द उलमा, उलमा का मतलब क्या है कि उलमा जो हमें बताते हैं कि जी अल्लाह का हुक्म क्या है और अल्लाह का हुक्म के खिलाफ क्या है, ये उलमा हमें बताते हैं। तो उस वजह से इस तरह से उलमा इसके बीच में आ जाते हैं, इस वाले जजिंग प्रोसेस के बीच में उलमा की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ठीक है ना। वरना तो प्रिंसिपल ये है कि अल्लाह का हुक्म और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ। अच्छा, दीन की इत्तेबा सुन्नत तरीके पर जी। फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पाकिस्तान में नो रूल्स ऑफ ड्राइविंग सो पीपल ड्राइव जैसे तैसे, बाहर आके रूल्स फॉलो करते हैं ड्यू टू फियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी। जी बेशक आपने सही बात कही है, लेकिन सवाल सवाल का तो ये जवाब नहीं था, चले बहरा जवाब दूंगा। तो फरमाते हैं कि यकीन अल्लाह ताला सब देने वालों से अच्छा रिस्क देने वाला है, और इस अच्छे रिस्क के साथ अल्लाह ताला उनको मस्कन भी अच्छा देगा, यानी ऐसी जगह ले जाकर दाखिल करेगा जिसको वो बहुत ही पसंद करेंगे। मस्कन सुकून की जगह यानी घर, ठीक है। तो लयुदखिलन्नहुम मुदखलन यरदौना, ठीक है, यानी दाखिल होने की जगह के जहां पर उनको सुकून मिल जाएगा और वो उसको पसंद भी करेंगे। रही ये बात कि बाज़ मुहाजिरीन इस तरह दुनियावी फतह और नुसरत और उसके फवायद से महरूम क्यों हुए, दुनियावी फवायद से और नुसरत से महरूम क्यों अल्लाह ताला ने उनको रखा ना, और उनके मुकाबले के कुफार उनके कत्ल करने पर कादिर क्यों हो गए, वो कहर इलाही से क्यों ना हलाक कर दिए गए। तो इसकी वजह यह है कि बिलाशुबा अल्लाह ताला हर काम की हिकमत और मसलहत को खूब जानने वाला है। इन्नल्लाहा लअलीमुन हलीम, यानी हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर में ये बयान कर रहे हैं कि देखो इस बात को बयान करने के बाद कि जरूर बिल जरूर उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा, ठीक है, हालांकि वो तो दुनियावी फायदे से तो महरूम रह गए, तो अल्लाह ताला ने इसके बाद इन्नल्लाहा लअलीमुन हलीम क्यों फरमाया। अल्लाह ताला ने इस बात को जिक्र करने के बाद अपनी ये वाली दो सिफात क्यों बयान फरमाई है, अलीम वाली और हलीम वाली क्यों बयान फरमाई है, ठीक है, ताकि इसलिए बयान फरमाई है कि देखो इसके अंदर हिकमत है कि हमने जो है ना वो दुनिया में कुफर का निजाम बरकरार रखा हुआ है, काफिरों को, शैतानों को, दुश्मनों को, नबियों के दुश्मनों को, मोमिनीन के दुश्मनों को हमने इस दुनिया के अंदर जिंदा रखा हुआ है, ठीक है ना, उनका पूरा का पूरा सिस्टम मौजूद है, इसमें हमारी हिकमत है और हम उस हिकमत को जानने वाले हैं, अलीम है, ठीक है, और हम हलीम है, यानी उन काफिरों दुश्मनों को जो है ना वो हम दुनिया में झट झट करके जो है वो मार नहीं देते, बल्कि उनको भी मोहलत देते हैं। क्यों मोहलत देते हैं, एक रीजन उसकी के ताकि वो शायद तौबा कर लें, ठीक है ना भाई, काफिर भी तो तौबा करके मुसलमान हो सकता है ना, अल्लाह का दुश्मन नबी का दुश्मन भी तौबा करके मुसलमान हो सकता है, ठीक है ना। और दूसरी हिकमत क्या कि यानी एट द सेम टाइम दूसरी रीजन उनको कायम रखने की क्या कि मुसलमानों के लिए आजमाइश रहे, ठीक है ना, ताकि मुसलमान उस आजमाइश में पूरे उतर करके जन्नत के ऊंचे ऊंचे दर्जात हासिल कर सकें, ठीक है। ऑल्टरनेटिव्स होंगे आपके सामने, तभी फिर पता चलेगा ना कि अच्छा ये कौन सा वाला रास्ता चूज करता है। अगर एक ही रास्ता होगा सामने तो फिर चॉइस ही क्या, फिर उसके बाद आजमाइश ही क्या, फिर तो ये दुनिया जो है वो जन्नत बन जाएगी या जहन्नुम बन जाएगी। अगर जो है वो अच्छा रास्ता खत्म, सिर्फ बुरा रास्ता, तो फिर तो ये जहन्नुम बन जाएगी, अगर सिर्फ अच्छा रास्ता तो फिर तो ये जन्नत बन जाएगी। तो भाई जन्नत जहन्नुम तो पहले से बने हुए हैं, एक नई छोटी सी जिसको कहें निक्की सी है ना अर्थ, प्लैनेट अर्थ के क्या साइज है, कोई साइज नहीं है प्लैनेट अर्थ का, इतना छोटा सा है इस पूरे के पूरे कॉस्मोस के अंदर प्लैनेट अर्थ, तो यानी प्लैनेट अर्थ तो क्या, अगर आप वो जो इन ये एस्ट्रोनोमर्स और एस्ट्रोलॉजर्स जो भी हैं ये लोग, इनकी जो बनाए हुए आप मैप्स देखें या इनके डायग्राम्स देखें, तो प्लैनेट अर्थ तो कहीं नजर ही नहीं आता, पूरा सोलर सिस्टम ही गायब हो जाता है, ठीक है ना। तो इतनी छोटी सी चीज अल्लाह ताला ने फिर बनाने की क्या जरूरत थी, अगर जन्नत जहन्नम तो पहले से मौजूद थी, एक और छोटी सी जन्नत बना दी, नहीं ये जन्नत नहीं है ना ये जहन्नम है दुनिया, बल्कि ये तो आजमाइश की जगह है। तो वो आयत मेरे जहन में आ नहीं रही बिल्कुल भी अल्फाज, वरना आपसे पूछते हाफिज साहब को ही अगर याद हो कि क्या है, कि अगर अल्लाह ताला चाहता, जिसका तर्जुमा बनता है कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो सबको एक जैसा बना देता, क्या है वो, एक पूरा बाकायदा उसके ऊपर बयान भी हो चुका है। तो अगर अल्लाह ताला चाहता तो, लेकिन अल्लाह ताला ने नहीं चाहा, بلکہ اس دنیا کو آزمائش کے لیے بنا دیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر کام کی حکمت و مصلحت کو خوب جاننے والا ہے، ان کی اس ظاہری ناکامی میں بھی بہت سی مصلحتیں اور حکمتیں ہیں، اور بہت حلم والا ہے، اس لیے دشمنوں کو فوراً سزا نہیں دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو مسلمانوں کو کافروں نے مارا، ان کو شہادت ملی، اور یہ ساری جو مسلمانوں کے ساتھ معاملات ہوئے، خصوصاً جیسے جنگ احد کا معاملہ ہے نا، جنگ احد کا الحمدللہ ہماری جو بچوں کی سیرت کلاس چل رہی ہوتی ہے، ہم بیچ بیچ میں یہ بھی بول دیتے ہیں کلاس میں کہ بھائی اگر کوئی نہیں سنتا اس کلاس کو، تو اگر آپ کسی اور سیرت کے موضوع کے ساتھ انگیج نہیں ہوئے ہوئے تو آپ اس کلاس کو سننے کے لیے اپنا نمبر بھیج دیں، ہم آپ کو ایڈ کر لیں گے اس کے اندر، بچے بھی سنتے ہیں بڑے بھی سنتے ہیں۔ تو اس سیرت کلاس کے اندر جو ہے الحمدللہ اتنی تفصیل کے ساتھ غزوہ احد ابھی ہم نے ڈسکس کر کے ختم کیا ہے کہ جس کے اندر اتنی حکمتیں ہیں اور اتنی مسلمانوں کے لیے اس کے اندر پیغامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قرآن مجید کو، اپنے کلام کو، جو کہ کتنا مختصر کلام ہے رائٹ، کہ ایک بچہ جو ہے وہ ایک سال کے اندر یا دو سال کے اندر اس کو پورا کا پورا حفظ کر لیتا ہے، کتنا مختصر ہے قرآن مجید۔ تو مختصر کتاب کے اندر تو رب العالمین بہت ہی چیدہ چیدہ چیزوں کو خالی اس میں ذکر کرتے ہیں نا، اور بہت ہی یعنی اجمالی طور پہ ذکر کرتے، لیکن غزوہ احد کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 60 آیات اپنے قرآن مجید کی، 60 آیات صرف اس ایک واقعے کے اوپر ڈیڈیکیٹ کر دی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور اس بات کا بھی کہ اہمیت تو اور بھی چیزیں جن کا طریقہ اور جن کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی قرآن مجید کے اندر، صرف اجمالی طور پہ بتا دیا، باقی تفصیل نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں بتائی، لیکن غزوہ احد کی تفصیل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود ساری کی ساری جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر ذکر کری ہے 60 آیات کے اندر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اب اس کی سگنیفیکینس اتنی بتا دی، اور یعنی اپنے باقاعدہ کلام کا اس کو حصہ بنایا، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام کی جو شکست ہوئی تھی نا غزوہ احد کے اندر، اس شکست میں مسلمانوں کے لیے کتنا سبق ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر ہم بھی ایک تو قرآن سے انگیج ہونا، اور پھر نبی علیہ السلام کی پوری زندگی سے انگیج ہونا، اسی سے پھر ہمیں صحیح طریقے صحیح معنوں میں ہدایات مل سکتی ہیں، جو کہ ایک مسلمان کی ضرورت ہے، جس کی مسلمان کو یعنی کافی شافی ضرورت ہے، اس سے انسان مسلمان کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدًا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہم نے سب کو ایک کیوں نہیں بنا دیا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا، تو تم سب کو جو ہے نا وہ ایک ہی امت بنا دیتا، سارے کے سارے مسلمان ہوتے، کافر جو ہے نا وہ دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتے، سارے مسلمان ہی دنیا کے اندر بھیج دیتے، ہے نا۔ وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، ٹھیک ہے نا، ایک اور آیت میں اسی طرح کی بات، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کیا مطلب، کس کو چاہتا ہے؟ یہ ہم کہتے ہیں جس کو چاہتا ہے، ہمارا کیا قصور؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس کو گمراہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے گمراہ کرنا، تو پھر میرا کیا قصور؟ اگر میں گمراہ ہو گیا تو اللہ نے مجھے گمراہ کر دیا، نعوذ باللہ۔ شیطان تو اس طرح کی باتیں ڈالتا ہے نا، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، تو میرا کیا قصور کہ اگر مجھے ہدایت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی؟ نہیں، مَن يَشَاءُ کا اس طرح ترجمہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کس کو چاہتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جائے؟ جو کہ گمراہی کے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ جب وہ گمراہی کے راستے کو اختیار کرتا ہے ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر کے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے رکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے ہر انسان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہر انسان، جس انسان کو بھی دنیا کے اندر پیدا کیا ہے نا، دونوں راستے وَهَدَيْنَاهُمْ نَجْدَيْنِ، یہ دیکھیں یہ جواب کہاں سے ملتے ہیں؟ سارے کے سارے اللہ کے کلام سے جواب ملتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ ہمیں وہ جواب جو ہے نا وہ پڑھنے نہیں آتے، سمجھ میں نہیں آتے، تو بھئی سمجھوانوں کے پاس جانا، ٹھیک ہے نا۔ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں نہیں آتے تو کوئی بات نہیں، جن کے پاس علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، جنہوں نے حاصل کیا علم، وہ بھی دیا ہوا کیا مطلب، انہوں نے حاصل کیا، ٹھیک ہے نا، اختیار کیا علم کے، قرآن مجید کے علم کی گہرائی میں جانے کو، تو ان کے پاس جا کر کے پوچھو کیا بتاتے ہیں۔ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستوں کی ہم نے ہدایت دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس نے خیر کے راستے کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ اس کو جو ہے نا وہ آگے کی ہدایت بھی, آگے اس کو توفیق بھی دیں, آگے مزید آگے بڑھو, مزید جو ہے وہ نیک کام کرو, مزید اللہ تعالیٰ کی رضا والے کام کرو. یہدی من یشاء, اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کو اور ہدایت ملے, اور جس نے برائی کے راستے کو اختیار کیا اپنے عقل سے اپنے اختیار سے, تو کیا ہوا؟ یضل من یشاء, اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ اور گمراہ, اور جیسے پیچھے سے لات پڑتی ہے, دھکے لگتے ہیں, ہے نا, چلو تم جو ہے وہ میرے رسول کے ساتھ یہ ٹریٹ کرتے ہو, میرے رسول کو یہ سمجھتے ہو, کس کسی بات تم نے ریجیکٹ کر دی ہے, چلو ادھر سے ایک پولیس والے مارتے ہیں نا دھکا پیچھے سے, رائٹ, اسی طریقے سے یضل من یشاء, اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہوتی ہے, اب اس نے میرے رسول کے ساتھ جو کیا ہے نا, اب میری چاہت یہ ہو گئی ہے کہ یہ گمراہی کے راستے کے اوپر آگے بڑھے, ٹھیک ہے, سنو بال کی طرح, وہ سنو بال افیکٹ تو تھوڑا سا مزید میں. جی تو آگے ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ, اسی طرح ذالک کا ترجمہ ایسے ہی, جیسے ہم کہتے ہیں نا, اور ایسے ہی اور اسی طرح, ٹھیک ہے نا, ومن عاقب, اور جس نے بدلہ لیا, ٹھیک ہے, عاقب بدلہ لیا, ٹھیک ہے, بمثل اتنی ہی اماؤنٹ میں, اتنی ہی مثل, ٹھیک ہے نا, اتنی ہی کوانٹیٹی میں, اتنی ہی اماؤنٹ میں, یا اتنی اسی شکل میں, ٹھیک ہے, ما عوقبوا بہ, جتنا کہ اس کے ساتھ کیا گیا تھا, برا کیا گیا تھا, ٹھیک ہے نا, یعنی اس نے بیسیکلی ریورٹ کیا جیسے کہ اس کے ساتھ کیا گیا تھا. ثم بغی علیہ, پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ مزید برائی کر دی گئی, مزید یعنی چڑھائی کر دی گئی, جیسے ہم کہتے ہیں اردو کے اندر, بغیہ کا مطلب آپ حد سے آگے بڑھ جائیں, بغاوت کرنا جس کو کہتے ہیں نا, حد سے آگے بڑھ جانا, تو اس کے اوپر جو ہے نا پھر مزید جو ہے وہ برائی کر دی گئی اس کے ساتھ. لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ, تو ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا, ٹھیک ہے, بھائی لام تاکید با نون ثقیلہ, انتہائی تاکید والے سیغے کے اندر فرماتے ہیں کہ ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. ان اللہ لعفو غفور, بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بھی ہے اور درگزر کرنے والا بھی ہے, یا عفو درگزر کرنے والا, ٹھیک ہے, اور غفور جو ہے وہ مغفرت کرنے والا یعنی معاف کرنے والا, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر پھر خلاصہ تفصیل میں فرماتے ہیں کہ یہ مضمون تو ہو چکا اور آگے یہ سنو, ٹھیک ہے, یعنی ذالکا کا جو ہاں کہ ہاں بھائی ایسی, اب اگلی بات سنو, ٹھیک ہے, تو آگے یہ سنو کہ جو شخص دشمن کو اسی قدر تکلیف پہنچا دے جس قدر دشمن کی طرف سے اس کو تکلیف پہنچائی گئی تھی, ٹھیک ہے, تو عاقبہ کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے ترجمہ کیا کہ تکلیف پہنچائے, ٹھیک ہے, جیسے دشمن نے اس کو تکلیف پہنچائی تھی. بدلہ لینا کا مطلب کا لفظ اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے نا, بدلہ لینا, یہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کرے تو اس سے آپ بدلہ تو نہیں لیتے نا, اس کے لیے آپ کوئی دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں, تو تکلیف پہنچانا اس میننگ میں جو ہے وہ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اردو میں بھی اور عربی میں بھی, عاقبہ جو عاقبو والا لفظ. تو پھر کیا ہوا کہ اس برابر سرابر ہو جانے کے بعد اگر اس دشمن کی طرف سے اس شخص پر زیادتی کی جائے, یعنی پھر اس نے ایک نئی برائی کر دی اس کے ساتھ, پہلے ایک برائی کری تھی, اس نے بدلہ لے لیا, ایکول, بالکل ایکول بدلہ لے لیا, لیکن اس نے پھر مزید ایک برائی کر دی, تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی ضرور امداد کرے گا, بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا, بہت مغفرت کرنے والا ہے. اب معروف مسائل میں فرماتے ہیں اس آیت کے, یعنی پیچھے چونکہ بات ہو رہی تھی نا, ربط آیت کے حساب سے بات ہو رہی ہے کہ پیچھے چونکہ ان کیا کہتے ہیں مومنین کی بات ہو رہی تھی, جو کہ مکہ مکرمہ میں تھے اور ان کے اوپر بے شمار اذیتیں, اذیتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے ان کے اوپر, وربل بھی اور فزیکل بھی, ایموشنل بھی, ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر وہاں سے نجات دی, ٹھیک ہے نا. اور اب نجات دینے کے بعد کیا ہوا کہ اذن للذین, ان کو اجازت دے دی گئی کہ اب جو ہے نا یقاتلون بانہم ظلموا, ٹھیک ہے. پیچھے ہم نے بڑی تفصیل سے اس آیت کے اوپر بات کری ہے کہ اب جو ہے نا وہ تم بدلہ لو نا, اور قتال کے ذریعے سے بدلہ لو, ٹھیک ہے نا. ان کے مال کو تم لوٹو بھی, ٹھیک ہے نا. بدر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو لے کے کہاں نکلے تھے, ان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اللہ کی طرف سے جب کسی چیز کا حکم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اللہ کی طرف سے اجازت کہیں یا حکم کہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے. اور جب اللہ کی طرف سے اسی چیز کے اوپر ممانعت آ جاتی ہے تو وہ چیز ناجائز ہو جاتی ہے. چوری کرنا اور لوٹنا, ہے نا, چوری کرنا اور لوٹنا جو ہے وہ ناجائز ہے. لیکن کیوں ناجائز ہے بھائی, چوری کرنا لوٹنا کیوں ناجائز ہے, حالانکہ ان الارض للہ, زمین تو اللہ کی ہے, رائٹ, الملک للہ اور مالک یوم الدین, تو اور ساری دنیا کا, لہو ملک السماوات والارض, سب کچھ اللہ کا ہے. تو جب سب کچھ اللہ کا ہے تو ہم کیا ہیں, اللہ کے بندے, رائٹ. اور زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی نا, بلکہ آگے آیت بھی آ رہی ہے نا, تمہارے لیے جو ہے ہم نے بنا دیا, سخر لکم, ٹھیک ہے نا, تمہارے لیے مسخر کر دیا. تو بھائی جب میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا, تو وہ فلانے کے گھر میں پڑا ہوا ہو یا فلانے کی پاکٹ میں پڑا ہوا ہو یا فلانے کے گراج میں کھڑی ہوئی ہو, میری ہے, رائٹ, کیونکہ وہ میرے اللہ کی ہے اور میں اللہ کا ہوں, تو وہ ساری چیزیں بھی میری ہیں, چاہے وہ آپ کے گھر میں ہو چاہے وہ فلانے کے گھر میں ہو, میرا ہے بھائی سب کچھ, سب کچھ میرا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میرا جب جی چاہے گا میں آپ کے گراج میں آ کر کے آپ کی گاڑی نکال کے لے جاؤں, ٹھیک ہے نا, میرا جب جی چاہے گا میں آپ کے گھر سے آ کر کے فلانی چیز اٹھا کے لے جاؤں, اور میرے پاس عقلی دلیل موجود ہے اس کی کہ بھائی جو آپ کے پاس رکھا ہوا ہے نا, سو کالڈ آپ کا گھر کو تھوڑی ہے, وہ تو اللہ کا گھر ہے, اللہ نے آپ کو دیا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں تو اللہ کا بندہ ہوں, تو میں اللہ کا دیا ہوا گھر آپ سے جو ہے میں لے سکتا ہوں, کیونکہ میں بھی تو اللہ کا بندہ ہی ہوں, عقلی دلیل, ٹھیک ہے نا. لیکن کیا ایسا ہے, ظاہر سی بات ہے آپ کو اچھا تو نہیں لگے گا نا کہ کوئی آپ کے گھر سے گاڑی اٹھا کر کے لے جائے, آپ کے گھر سے جائے آپ کے جولی اٹھا کر کے لے جائے, ٹھیک ہے. کیوں بھائی, اللہ نے منع کیا ہے کہ نہیں نہیں آپ اس طرح سے دوسرے کے جو ملکیت میں ڈیسائیڈ ہو چکا ہے, دوسرے کی ملکیت جو ہے نا وہ کسی کے اوپر ثابت ہو چکی ہے, اب جو ہے نا وہ آپ اس عقلی دلیل کی بنیاد پر کہ اللہ کی ہے اس وجہ سے میں اپنی مرضی سے لے سکتا ہوں, آپ نہیں لے سکتے. کیوں بھائی, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں 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 لے سکتے, یہ چوری کہلائے گی, اور اگر تم چوری کرو گے تو ہاتھ کاٹا جائے گا, ڈاکہ ڈالو گے, یعنی باقاعدہ فورسفلی بندوق کی گو کی کی زد کے اوپر آ کر کے اگر کسی سے لوگے, راستے میں روک کر کے اس سے کسی چیز کو لوگے, تو وہ ڈاکہ کہلائے گا, اور ڈاکے کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ کاٹنے سے بھی زیادہ کاٹا جائے گا, ہے نا, اور بہت سخت قسم کی سزا دی جائے گی. کیوں بھائی, میری عقل تو کہتی ہے نہیں ہونا چاہیے سب کچھ, نہیں نہیں آپ کی عقل کی بنیاد پہ کوئی تھوڑی کوئی فیصلہ ہوتا ہے, فیصلہ تو اللہ کے رسول کے حکم پر ہوتا ہے, اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ چوری ڈاکہ ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چوری ڈاکہ ہے, آپ کی عقل میں یہ بات آئے یا نہ آئے, اٹ ڈز ناٹ میٹر, واٹ میٹرز از واٹ دی پروفٹ آف اللہ سیڈ, رائٹ. یہاں سے جو ہے وہ احکامات آتے ہیں, ویسٹرن تھاٹ سے وہ احکامات نہیں آتے, یا ایسٹرن تھاٹ سے, چائنیز تھاٹ سے, یا افریقن ٹریڈیشن سے احکامات نہیں آتے. احکامات کہاں سے آتے ہیں, اللہ سے آتے ہیں, اللہ کے رسول کے واسطے سے ہم تک پہنچتے ہیں, یہ ہوتا ہے اللہ کا حکم, اور اس سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے. تو بھائی جس اللہ نے چوری اور ڈاکے کو حرام قرار دیا, اسی اللہ نے ود سرٹن سرکمسٹانسز ود ایکسپشنز, ہے نا, اپنے رسول کو کہا ڈاکہ ڈالیے جا کر کے, آپ ان کے سامان کو لوٹئے. اب جو ہے وہ عقل کو سر کو کھجا رہے ہیں, یعنی یہ تو میرے عقل میں نہیں آ رہا, یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے, یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ کسی وہ قریش مکہ کو جو ہے نا وہ سامان جو انہوں نے اپنی محنت سے کمایا تھا, اور وہ ٹریڈ کیا کرتے تھے اور سفر کرتے تھے, اور اس محنت سے انہوں نے جو ہے وہ سارا سامان کمایا تھا, یہ لوگ کیسے جا کر کے لوٹ سکتے ہیں, یہ تو صحیح نہیں لگتا مجھے, دیر مسٹ بی سم تھنگ رانگ ود اٹ, ہے نا. تو عقل شریف جو ہے اس کو تھوڑا سا اور استعمال کر لیجئے, ठीक है ना, सिर्फ ये नहीं कि मेरी अकल में ये नहीं आ रहा कि डाका कैसे जायज हो गया एकदम से बदर के मौके के ऊपर, थोड़ा सा और अकल को इस्तेमाल कर लीजिए कि भाई नाजायज कैसे हुआ था डाका, नाजायज भी तो अल्लाह के हुक्म से ही हुआ था, राइट? तो जैसे अल्लाह के हुक्म से कोई चीज नाजायज होती है, उसी तरह अल्लाह के हुक्म से वो चीज जायज होती है। नॉट बिकॉज मुझे समझ में आई तो जायज है, तो मुझे नहीं समझ में आई तो नाजायज है, या गोरे साहब को समझ में आई तो जायज है और गोरे साहब को नहीं समझ में आई तो नाजायज है, या चीनी साहब को समझ में आई तो जायज है और चीनी साहब को समझ में ना आई तो नाजायज है। नो, एब्सोल्युटली नॉट, है ना? तो बहुत अच्छी तरह हम सब जानते हैं एब्सोल्युटली नॉट का मतलब, ठीक है ना? नो, एब्सोल्युटली नॉट। ये तो जायज और नाजायज का फैसला कौन करेगा, कहाँ से होगा? ये अल्लाह की किताब और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत से होगा और कहीं और से नहीं होगा, कहीं और से नाजायज और जायज का फैसला नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो मारूफ मसाइल के चंद आयात पहले ये मजमून, अच्छा ये तो खैर रबते आयात के बारे में बात हो रही थी कि जिस तरह पीछे जो है ना वो सब कुछ बात हुई कि जी पहले तो आपको मना कर दिया गया था, हालांकि जुल्म ज्यादती का नतीजा होना क्या चाहिए था, उसी वक्त जवाब देना चाहिए था ना, जिस वक्त आपको किसी ने मारा उधर ही आप उल्टा लगाए उसको, लेकिन अल्लाह का हुक्म क्या आ गया, नहीं लगाना तुमने वापस, सहते रहो, तुमने जवाब नहीं देना, सहाबा कराम वर बाउंड, नहीं दिया जवाब। फिर उसके बाद हिजरत हो गई, अल्लाह के हुक्म से हिजरत हो गई, फिर उसके बाद जो है वो इजाजत हो गई, अब लगाओ जा करके उनको, अब लगाना जायज हो गया। यही तो दीन है, ठीक है ना? यही तो इबादत है, अताअत, अताअत जो है ना ये इबादत होती है, टक्करे मारना या मुसल्ला बिछाना और दे धनादन ये इबादत नहीं होती, ठीक है ना? जब हुक्म है तब करो, नहीं हुक्म है ना करो, ठीक है ना? करोगे अगर जब जब हुक्म ना करने का है उस वक्त करोगे तो ये इबादत नहीं होगी, ये गुनाह बन जाएगा। जैसे एक औरत जो है वो कहे मैं तो अपने परवरदिगार की इबादत करनी चाहती हूँ, मुझे तो परवरदिगार के सामने सजदा करके बड़ा मजा आता है, बड़ा मैं तो अपने परवरदिगार के करीब फील करती हूँ, तो मैं तो हैज की हालत में भी नमाज पढ़ूंगी, क्योंकि मी एंड माई परवरदिगार, हु आर यू टू टेल मी नॉट टू प्रे, राइट? वो बोले मौलाना साहब को, या अगर उसके शौहर साहब जो है वो थोड़े मौलवी टाइप के हैं, वो कह रहे नहीं नहीं बेगम साहबा आप हैज की हालत में नहीं पढ़ सकते, तुम कौन होते हो मेरे और मेरे अल्लाह के बीच में आने वाले, राइट? मैं तो पढ़ूंगी, मुझे तो बड़ा अच्छा फील होता है, तो मैं हैज की हालत में भी नमाज पढ़ूंगी, मैं तिलावत भी करूंगी, मैं कुरान मजीद भी पढ़ूंगी हैज की हालत में, है ना? मेरे अल्लाह का कलाम है, तुम कौन होते हो बीच में आने वाले, मैं तो हैज की हालत में भी कुरान शरीफ पढ़ के दिखाऊंगी, ठीक है ना? तो ये क्या है, कुरान शरीफ पढ़ने पर उसको एक हर्फ के ऊपर 10 नेकियां मिलेंगी, ये कितनी नेकियां मिलेंगी, है ना? थोड़ी कम हो जाएंगी, 5 नेकियां मिल जाएंगी, नहीं एक भी नेकी नहीं मिलेगी, बल्कि गुनाह मिलेगा, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट असल चीज है, कॉन्सेप्ट सिर्फ ये सुन लेना और फिर उसके बाद जो है वो गोल करके जो है वो फिर अपने वही वाला पुरानी हरकतें जो हम करते आ रहे हैं सारी जिंदगी, अपनी मन मर्जी, अपनी अकल, अपना सब कुछ, है ना? बाकी जो कुरान मजीद शरीयत के अहकामात उलमाए कराम, ये की क्या है, ये क्यों है खामखा की एक पखराड़ बीच में मेरे और मेरे परवरदिगार के दरमियान, मौलवी साहब एक पखराड़ बने हुए हैं, ठीक है ना? ये नहीं कि सुन करके फिर उसी एटीट्यूड के अंदर वापस चले जाएं, ये सारी बातें जो हैं वो सिर्फ किस लिए की जा रही हैं, ताकि हम अपने इस बिल्कुल सोच का जाविये को तब्दील करें, तब फायदा होगा, सोच का जाविया पूरा का पूरा तब्दील हो जाएगा ना, तब फायदा होगा, वरना हुज्जत बन जाएगा ये सब कुछ हमारे खिलाफ, क्योंकि कल को हमसे जब पूछा जाएगा तुम्हें तो सब कुछ समझा दिया गया था और इतनी मिसालों के साथ समझाया गया था जिसमें से किसी एक से भी तुम इनकार नहीं कर सकती थी या नहीं कर सकते थे, फिर तुमने जो है वो अपने सोच के दावे को तब्दील क्यों नहीं किया, राइट? और जिस दिन फिर ये सवाल हमसे कर लिया गया ना, तो फिर उसके बाद हम सबकी अल्लाह ताला उस वक्त से हिफाजत फरमाए कि जब हम जो है ना वो यानी बिल्कुल स्पीचलेस खड़े हों और हमारे पास कोई जवाब ना हो और उसके बाद हमारे लिए जहन्नुम का फैसला कर दिया जाए कि तुमने कोई मेरी इबादत नहीं करी है, तुमने तो सिर्फ अपने नफ्स की इबादत करी है, तुमने तो सिर्फ अपने नफ्स की अताअत करी है, मेरी कौन सी इबादत लेकर के आए हो, तो जन्नत में क्या फ्री में तुम्हें दाखिल करूं, कुछ लेकर के आते तो जन्नत में दाखिल करता ना, तुमने तो अपनी मनमर्जी चलाई है सारी जिंदगी, इबादतों के धोखे में अपनी मनमर्जी की जिंदगी गुजारी है, जन्नत किस किस चीज की बुनियाद पे मिले मैं तुम्हें दे दूं, जाओ जहन्नुम के अंदर, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए तो जहन्नुम बनाई थी मैंने, राइट? वो दिन हमें ना देखना पड़ जाए, ठीक है। आरिफ मसाइल के फरमाते हैं कि चंद आयात पहले ये मजमून मजकूर हुआ है कि अल्लाह ताला मजलूम की मदद करता है, وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, कि बेशक अल्लाह ताला उनकी मदद के ऊपर कुदरत रखता है, ठीक है ना, ये पीछे इसी सूरत के अंदर हमने पढ़ा था। मगर मजलूम की दो किस्म है, एक तो वो जिसने दुश्मन से जुल्म का कोई इंतकाम और बदला लिया ही नहीं बल्कि माफ कर दिया या छोड़ दिया, ठीक है, अल्लाह ताला का हुक्म इसी कुरान मजीद के अंदर ये भी तो है ना, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, अगर तुम्हारे साथ कोई बुराई हो, ठीक है ना, तो तुम उससे जो है वो बराबर सराबर का बदला ले लो, بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ, और लेकिन अगर तुम सबर कर लो, لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, ठीक है, तो ये सबर करने वालों के लिए ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना, यानी ये ज्यादा बेहतर है जिसने सबर किया, ठीक है, कि अगर तुम ना करो बदला, बदले वाला काम ना करो, ठीक है। तो अगर इस किसी ने जो है वो इस वाली बात के ऊपर अमल कर लिया कुरान मजीद की, ठीक है, तो वो पहली किस्म हो गई, और दूसरा वो शख्स है कि जिसने अपने दुश्मन से बराबर सराबर बदला और इंतकाम ले लिया, जिसका मुक्तजा ये था कि अब दोनों बराबर हो गए, ठीक है ना, बिल्कुल इक्वल बदला ले लिया। अब ये इक्वल बदला चूंकि बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है ना, इंसान जब इस किस्म का मामला किसी के साथ शुरू करता है ना, तो हमारे पास कोई कैलकुलेटर को थोड़ी फिक्स हुआ हुआ हमारे हमारे हाथों के अंदर या हमारी जुबान के अंदर, क्या ना, हमने कैलकुलेट करके उसका बदला उसका उसको वे किया है ना, उसने मेरे साथ जो है ना वो 10 किलोग्राम ज्यादती करी थी, राइट, तो मैं भी उससे बिल्कुल एग्जैक्टली 10 kg ज्यादती करूंगा। आपके पास कोई ऐसा कैलकुलेटर है? हमारे पास कोई है ऐसे कैलकुलेटर, राइट, है तो नहीं ना। तो इस वजह से जो है ना इंसान से गलती हो जाती है, ठीक है, और फिर गलती करवाने वाले भी मौजूद होते हैं, कुछ इंसान पीछे से कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, राइट, बकअप करने वाले, तालियां पीटने वाले और गुस्सा दिलाने वाले, तो और शैतान शैतान जो है वो और किस तरीकों से भी जो है वो हमसे गलतियां करवाता है। तो इस वजह से ना बराबर सराबर बदला लेना जो है ना ये बड़ा मुश्किल काम है, इससे ज्यादा ही इंसान बढ़ जाता है, और जब ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो खुद जालिम बन जाता है, ठीक है। तो बेहतर यही है सब्र कर जाओ ऐसे मामले के अंदर, ठीक है ना। एक और तरीका होता है जिसके अंदर किसी के साथ जो है वो आप जुबानी या फिजिकल करते हैं मामला, ठीक है ना, जुबानी उसको जाकर के सुना करके आए, और या फिजिकल किसी को मार करके आए, जिसके अंदर के ये वाला इहतमाल नहीं होता, ठीक है ना, वो कब, वो जरा आप बता दें, जबकि आपने किसी को जुबानी सुना करके आई या सुना करके आए, राइट, या फिजिकल टिका करके आए, टिकाया भी आपने उसको खूब जबरदस्त तरीके से, सुनाया भी आपने उसको खूब जबरदस्त तरीके से, लेकिन आपके ऊपर ज्यादती का इल्जाम भी नहीं आया, ये कब होता है कि ज्यादती का इल्जाम भी नहीं आया हालांकि आपने खूब जबरदस्त तरीके से उसको तबीयत ठीक करी है आपने, ये कैसे होता है, ये आपसे सवाल है। जिहाद, चले उन्होंने जवाब तो बड़ा अच्छा दिया है, लेकिन क्या मतलब जिहाद, मतलब यहाँ पे जिहाद का लफ्ज आपने कैसे इस्तेमाल किया, शरीयत के खिलाफ करने पर, माशाल्लाह, शरीयत के खिलाफ करने के ऊपर आपके ऊपर इल्जाम नहीं आता कोई, जबरदस्त, क्या जवाब है आपको, माशाल्लाह, इस्लाह के वक्त, यानी आप इस्लाह के वक्त किसी को टिका करके आ जाए तो आपके ऊपर इल्जाम नहीं आता जाति का, तो ये नामुसर रिसालत, माशाल्लाह, कहाँ से लेकर के आए आप, कहाँ की लेकर के आए बल्कि आप जी, हुक्म की तामील में, हुक्म की तामील में, जब आपको आपके ऊपर जो अहले इल्म और अहले हिल्म और अहले हिकमत है ना। ये तीन अल्फाज जब हम उज़िना लिल्लज़ीना युकातलूना फी सबीलिल्लाह वाली वाली आयत डिस्कस कर रहे थे ना, बेअन्नहुम ज़ुलमू, युकातलूना बेअन्नहुम ज़ुलमू वाली आयत डिस्कस कर रहे थे, तो ये तीन अल्फाज बहुत ज्यादा इस आजिज़ ने अपनी आदत के मुताबिक रिपीट किए थे, अहले इल्म, अहले हिल्म और अहले हिकम, हिकमत वाले जो ऊपर हमारे हैं, उन्होंने हुक्म दिया हो, जाओ जा करके उसको सुना करके आओ, जाओ जा करके उसको टिका करके आओ। तब जो है ना ये वहां पे फिर मेजरमेंट्स नहीं करनी होती कि उसने 20 kg बुरा किया था, कि उसने 30 kg बुरा किया था, 40 kg बुरा किया था, ठीक है ना। ये तो हुक्म है, अब तो जाकर के टिकानी है। इसी को जिहाद कहते हैं। ये जो आपने माशाल्लाह वन वर्ड जवाब तो सही दिया, जिहाद, लेकिन जिहाद किस चीज को कहते हैं? जब ऊपर से ऐसे किसी अथॉरिटी ने हुक्म दिया हो जाके टिका के आने के लिए, तब उसको जिहाद कहते हैं। और इसके अंदर फिर ये नहीं होता कि जी आपने उतना ही किया था कि जितना उसने किया था, नहीं, उस वक्त कोई मेजरमेंट्स नहीं होते, उस वक्त कोई मेजरमेंट्स नहीं होते, लेकिन वो आप हुक्म की तामील में कर रहे होते हैं ना, अपने हिसाब से कुछ थोड़ी कर रहे होते हैं कि नहीं मुझे बड़ा बुरा लगा कि उसने मेरे साथ ऐसी क्यों किया, मैं उसको बराबर में टिका करके आऊंगी। नहीं, उसमें फिर अगर आपने बराबर किया तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो फिर आप खुद जालिम बन जाएंगे, ठीक है ना, आप खुद जालिम बन जाएंगे, ठीक है। बाकी जो आपने लिखा इफ वी आर डूइंग थिंग्स इन फेवर ऑफ अल्लाह, तो ये तो फिर गैर मुकल्लद वाला जवाब हो गया, क्योंकि गैर मुकल्लद जो है ना कहते हैं मैं खुद ही डिसाइड करूंगा और खुद ही जवाब दूंगा, तो गैर मुकल्लदों के साथ रह रहे करके बहुत ज्यादा जो है ना फिर हम भी गैर मुकल्लद बन जाते हैं, हम भी उसी तरह से सोचना शुरू कर देते हैं और हमें फिर हुक्म की तामील वाला कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता, ठीक है। तो मारुफ मसाइल पढ़ रहे हैं कि ये तो हो गया कि दूसरा वो शख्स जिसने अपने दुश्मन से बराबर सराबर बदला और इंतकाम ले लिया, जिसका मुक्तदा ये था कि अब दोनों बराबर हो गए, आगे सिलसिला खत्म हो, मगर दुश्मन ने उसके इंतकाम लेने की बिना पर मुश्तइल होकर दोबारा हमला कर दिया और मजीद जुल्म किया, तो ये शख्स फिर मजलूम ही रह गया जिसके ऊपर जुल्म हुआ, ठीक है। तो जब आप जवाब देते हैं ना तो फिर जो जालिम था जिसने इब्तिदा करी थी, तो जो इब्तिदा करता है ना जुल्म का, तो वो जो बंदा होता है ना वो कोई उमूमी तौर पर वो बंदा कोई इंसाफ पसंद बंदा नहीं होता, वो कोई नेक परहेजगार बंदा नहीं होता कि भाई ऐसे बैठे बैठाए किसी के ऊपर जुल्म शुरू कर दे, भाई वो तो यू नो कुछ उसके साथ सीरियस किस्म के इश्यूज हैं, राइट, या तो वो काफिर होगा या जो है वो रूहानी बीमारियों का शिकार होगा, गुस्से का मरीज होगा या तकबर का शिकार होगा, इसी वजह से तो उसने आपके ऊपर जुल्म किया था, ठीक है ना। तो जब आप उसको रिटर्न करेंगे ना तो फिर क्या वो उसके बाद कहेगा हाँ यार ये तो जो मैंने किया था ना मुझे उसका बदला मिल गया, ये तो इंसाफ हो गया और वाकई अब मैं चुप के बैठा रहना चाहिए मुझे अभी, नहीं, वो तो भाई बदमाश आदमी है, बदमाश ना होता तो जुल्म क्यों करता, राइट। तो बदमाश आदमी के साथ जब आपने अपना हक बजाने बदला ले लिया ना तो फिर उसके बाद वो बदमाश जो है ना वो चुप नहीं बैठेगा, बल्कि उसने फिर उसके बाद पहले से भी बढ़ करके बदमाशी करनी है, ठीक है ना। तो इसी वजह से ना अल्लाह ताला जो फरमाते हैं ना उसके अंदर हिकमत होती है, उसी में हमारा फायदा होता है, फरमाया वला इन सबरतुम लहुवा खैरुन लिस्साबिरीन, है ना, अगर तुम चुप करके बैठ जाओ ना, सबर करो और अपने मामले को अल्लाह के हवाले कर दो, ये सबर करने का मतलब खाली ये नहीं होता चुप करके बैठ जाना, नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है हमारा सबर करने का, नहीं, सबर करने का मतलब, सबर करने का लाजमी जुज ये होता है कि अपने मामले को अल्लाह के हवाले करो, अल्लाह के हवाले, लेट अल्लाह टेक रिवेंज ऑन योर बिहाफ, ठीक है ना। तो बदला खुद लेने के बजाय भाई अगर खुद लोगे तो पता नहीं बराबर ले भी सकोगे कि नहीं, ज्यादती ना कर दो, और तीसरी बात कि तुमने बदमाश को जो छेड़ दिया ना जा करके, अब उसने जो है वो डबल बदमाशी करनी है, अब तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है कि उस बदमाशी को जो है वो रोक सको, राइट। तो कितने प्रॉब्लम्स हैं बदला लेने के अंदर, ठीक है ना, कितने एहतमालात हैं खराब बदला लेने में, अपना मामला खराब, या तो फिजिकली अपना मामला खराब होगा या आखिरत के हिसाब से अपना मामला खराब होगा अगर ज्यादती करने वाले बन जाओगे तो, ठीक है ना। तो खैर किसके अंदर है, खैरुन लिस्साबिरीन, चुप करके बैठने में और अपना मामला अल्लाह के हवाले करने में, इसी के अंदर खैर है। अब अल्लाह ताला जो है ना फिर क्या करते हैं, آگے پڑھتے ہیں چلیں اس کے بارے میں. تو فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس دوسری طرح کے مظلوم کی امداد کا بھی وعدہ ہے, مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ یہ ہے کہ آدمی پہلے ہی ظلم پر صبر کرے اور معاف کر دے, انتقام نہ لے, جیسا کہ بہت سی آیات میں اس کا ذکر ہے, یعنی صرف اس آیت میں نہیں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی تھی, بلکہ فمن عفا و اصلح فاجره علی اللہ. اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں اور جگہوں کے اوپر بھی نا اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ جس نے درگزر کر دیا اور صلح کر لی, بس اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى, اور اگر تم معاف کر دو گے یعنی درگزر کر لو گے تو وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی تمہیں فکر تھی نا کہ اگر میں نے زیادتی کر دی تو میں تو مارا جاؤں گا, میں تو ظالم بن جاؤں گا, تو یہی تو تقوی ہے. ٹھیک ہے نا, کہ دور رہنا زیادتی سے, ظلم سے, گناہ سے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اقرب للتقوی. وَلَمَن صَبَرَ, اور اس کے لیے جس نے کہ صبر کیا, وغفر, اور معاف کر دیا, ان ذلک لمن عظم الامور, یہ تو یعنی بڑا کام ہے نا, یہ تو یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, یعنی عظم الامور بڑا کاموں میں سے بڑا کام ہے یہ, ہے نا, جس نے معاف کر دیا اور درگزر کر لیا. ٹھیک ہے, تو ان سب آیات میں ترغیب اس کی دی گئی ہے کہ ظلم کا بدلہ نہ لے بلکہ معاف کر دے اور صبر کرے. ٹھیک ہے, ہم نے تو جہاد میں جانا بھی نہیں ویسے بھی, ہے نا, آج کل تو اوی اللہ کے علاوہ ہمیں کچھ کرنا نہیں آتا, ہے نا, عورتوں کی تو ویسے بھی جہاد نہیں تھا, مرد آج کل جہاد نہیں کر سکتے. تو آج کل یہ ساری جو ہمارے اوپر اپلیکیبلٹی ہو رہی ہے نا ان چیزوں کی, یہ ہمارے گھروں کے اندر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا, اس وقت گھروں کے اندر نعوذ باللہ قتال چل رہا ہے, قتال, جہاد نہیں, قتال چل رہا ہے, یعنی باقاعدہ, ہے نا, شادی خانہ بربادی. ہم نے تو پورا الحمدللہ اللہ تعالیٰ بڑے دنوں سے جو ہے وہ دن میں ڈال رہے تھے کہ یار بہت بربادی ہو رہی ہے, اب اس کے اوپر کوئی کچھ باقاعدہ اس تعلیمی سلسلہ آغاز کرنے کی ضرورت ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آسان فرما دیا. ٹھیک ہے, کہ یہ جو گھروں کے اندر قتال ہے, اس قتال کو بند کرو. قتال بند کیسے ہوگا بھائی, ہے نا, خود ہی صبر کرنا پڑے گا, اگلے بندے کو ہدایت نہیں دے سکتے. اگلا بندہ اگر ظلم کر رہا ہے, اگر واقعی وہ ظلم کر رہا ہے, تو وہ اللہ کا بندہ ہے یا اللہ کی بندی ہے. صرف مرد کو تھوڑی ظلم کر رہے ہوتے ہیں, بہت سی جگہوں پہ عورتیں بہت زیادہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو وہ اللہ کی بندی, اللہ کا بندہ, اور اللہ تعالیٰ کے حوالے اس کے معاملے کو کرنا ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے اس کے لیے, ورنہ اگر بہت ہی زیادہ دل خراب ہوا ہوا ہے تو اللہ کے حوالے بس. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بدلہ لیں گے. ٹھیک ہے نا, تو گھر کے اندر اگر بدلے لینے والے سلسلے چلتے رہیں گے تو گھر کے اندر قتال ہی ہوگا بس, اور اسی کو شادی خانہ بربادی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکید کری ہے نا اپنے قرآن مجید کے اندر کسی چیز کی, تو ایسی تو نہیں کری ہے نا. فرمایا کہ قرآن کریم کی ان ہدایات سے اسی طرز کا افضل و ادنا, افضل و اولا ہونا ثابت ہوا. شخص مذکور جس نے اپنے دشمن سے برابر کا بدلہ لے لیا, جس کا کہ تذکرہ اس آیت کے اندر ہے, تو اس نے اس افضل و اولا اور قرآن ہدایات مذکورہ پر عمل ترک کر دیا, ہے نا. تو اس سے شبہ ہو سکتا تھا کہ اب یہ شاید اللہ کی نصرت سے محروم ہو جائے. ٹھیک ہے, کہ بھئی اب اس کے اوپر اگر زیادتی ہوگی تو اللہ کی نصرت سے محروم ہو جائے, یعنی اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے اچھا تم نے میری بات ہی مانی, چلو اب تم مظلوم بھی اگر ہوگے نا پھر بھی میں تمہاری مدد نہیں کروں گا. نہیں, بلکہ فرمایا کہ اس لیے آخر آیت میں ارشاد فرما دیا ان اللہ لعفوٌ غفور, یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کی اس کوتاہی پر کہ افضل و اولا پر عمل نہیں کیا, اس سے کوئی مؤاخذہ نہیں فرمائے گا, بلکہ اب بھی اگر مخالف نے اس پر دوبارہ ظلم کر دیا تو اس کی امداد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی نا ایمان والوں کے خیر یہاں پہ تو ایکچولی ایمان والوں کا معاملہ ہے بھی نہیں, یہاں تو ہر انسان کا معاملہ. ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ کا حلم اپنے بندوں کے ساتھ, چاہے وہ ماننے والے بندے ہوں چاہے وہ نہ ماننے والے بندے ہوں. ٹھیک ہے نا, لیکن اگر مظلوم ہے تو اللہ تعالیٰ نا ان کے اس والی غلطی کو بھی کہ میری بات نہ مانی, ورنہ تو کیا ہوتا ہے اگر کوئی بڑا گھر کے اندر جیسے کسی چھوٹے کو کہے نا کہ تم میں تمہیں ترغیب, ویسے تمہاری مرضی ہے لیکن میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ جو ہے نا وہ ایسا نہ کرو تو زیادہ بہتر ہے, مجھے زیادہ خوشی ہوگی, تو کہے کہ اچھا یہ فرض تو نہیں ہے نا, ہم کہیں کہ نہیں فرض تو نہیں ہے لیکن اگر نہ کرو تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی اور زیادہ بہتر ہے. وہ کہے نہیں میں تو کروں گا, چونکہ بھائی آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ کرنا فرض تو نہیں ہے تو میں تو کروں گا, तो फिर उसके बाद हमारा ऐसा दिल खराब होता है, हमारा ऐसा जो है ना मूड ऑफ होता है कि हम फिर उसको कहते हैं नहीं जाओ यार, तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तुमने मेरी बात नहीं रखी ना, तो अब बस यू आर ऑन योर ओन, मैं तुम्हारी फिर आप किसी किस्म की मदद नहीं करूंगा। लेकिन अल्लाह ताला ऐसा नहीं कर रहे, अल्लाह ताला की बात भाई, अल्लाह ताला ही अल्लाह ताला है ना, कोई और तो अल्लाह ताला के मुकाम पे पहुंच भी नहीं सकता ना। ठीक है, तो इस वजह से नेकों के साथ भी ऐसा हो जाता है कि अगर उनकी बात जो है वो ना सुनी जाए तो फिर वो अलग हो जाते हैं मामले से। लेकिन अल्लाह ताला तो खालिक व मालिक और कादिर है ना, बंदों का अल्लाह के सिवा तो और कोई है ही नहीं। तो अल्लाह ताला ने ये उसूल बना दिया कि नहीं, अगर तुम मेरी बात नहीं भी रखोगे ना, लेकिन बराबर सरावर का बदला लोगे, ज्यादती नहीं करोगे, ठीक है ना, ये बात भी याद रखें, ज्यादती नहीं करोगे, ठीक है ना, बेमिसले मा उकिब तुम भी मा उकिबा भी, ठीक है ना, उतने ही मिसल अगर उसे बदला लोगे तो फिर अगर वो तुम्हारे ऊपर ज्यादती करता है ना तो फिर मदद करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजों को ले करके अगर हम इस पिक्चर को देखें ना, तो फिर एक तो अल्लाह ताला की अजमत और अल्लाह ताला की रहमत हमारे सामने आती है, और दूसरा ये भी कि हम इसको लाइटली नहीं ले सकते इन चीजों को ना, कि भाई हमें तो अल्लाह की मदद मिलेगी, और नहीं भाई वो उस कंडीशन के साथ है, वमन आकबा बिमिस्ली मा उकबा भी, इस कंडीशन के साथ है ये। ठीक है, सुम्मा बोगे आ रही हला यंसुर नहुल्ला नहुल्ला, ठीक है, तो इतनी मजाल अगर हमारे अंदर है कि हम बेमिसल की कैलकुलेशन के साथ जो है वो बदला ले लें, और फिर उसके बाद अगला बदमाश जब हमारे ऊपर काउंटर अटैक करे तो हम उसको उस वक्त भी जो है ना फिर अल्लाह ताला के हवाले करें। देखें अल्लाह ताला मदद करेगा कब, जब जब उसने काउंटर अटैक किया है, तो अब आप जो है ना वो डबल काउंटर अटैक करने की बजाय अब जो है ना वो आप अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मजलूम वाला मामला है ना, मजलूम की जरूर बिल जरूर मदद होगी, इसका भी ताल्लुक किस चीज के साथ है, मजलूम की दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं करते, चाहे वो काफिर क्यों ना हो, हदीस मुबारक के अंदर है, राइट, मजलूम की दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं करते चाहे वो काफिर मजलूम क्यों ना हो। ठीक है, तो अब काफिर मजलूम हो या मोमिन मजलूम हो, जब काउंटर अटैक बदमाश ने आपके ऊपर कर दिया, तो अब जो है वो आप दुआ कर रहे हैं या आप जो है वो नेक्स्ट काउंटर अटैक कर रहे हैं, ठीक है ना, जिससे कि एक चेन शुरू हो जाने वाली है, दुआ तो बीच में रह गई ना, तो भाई अल्लाह की जो मदद आनी थी वो तो दुआ के साथ आनी थी, ठीक है ना, क्योंकि आपके ऊपर जुल्म हो गया, तो अब आपने अल्लाह से दुआ करी तब अल्लाह की मदद आ जाएगी, ठीक है ना, लेकिन आपने तो दुआ करी नहीं, आपने तो कहा मैं खुद ही बदला लूंगा या मैं खुद ही बदला लूंगी, ठीक है ना, तो अब तो ये सिलसिला जो है वो अल्लाह ताला क्या करते हैं, अल्लाह ताला फिर बंदों पे छोड़ देते हैं। अच्छा भाई, अब जो है ना इनमें से दो ताकत जो जो ज्यादा ताकतवर है ना वो फिर कामयाब कामयाब होगा, क्योंकि दोनों ही मुझसे गाफिल हैं, बदमाश साहब वो भी मुझसे गाफिल है, वो भी मुझे नहीं पुकार रहे, और जो मजलूम साहब हैं वो भी मुझे नहीं पुकार रहे, वो भी जो है वो बदला लेने के चक्कर में, और बदमाश तो वैसे ही जो है वो बदला लेने के चक्कर में, तो चलो जी लड़ते रहो, ठीक है ना, तो उसमें फिर दुनिया के दुनियावी एतबार से जिसके पास ज्यादा ताकत होगी, दुनियावी एतबार से जिसके पास ज्यादा वसाइल होंगे, वो फिर दुनिया के अंदर जीत जाएगा। ठीक है, तो ये जरा सा कॉम्प्लेक्स किस्म का मसला है। तो आसान क्या है, आसान ये है कि भाई जिहाद करना है तो जिहाद करो, और जिहाद जो है ना ऊपर के हुक्म के बगैर हो नहीं सकता, ठीक है ना, वरना सबर कर लो, सबर कर लो, अगर अगला बंदा जो है वो तुम्हारे खानदान का है, अगर अगला बंदा जो है वो यानी कोई ऐसा है कि जिस जिसके बारे में तुम्हारे दिल में कोई नरम गोशा है, तो उसके लिए दुआ करो, ठीक है ना, या उसकी इसलाह के लिए जो है वो कोई ना कोई काम कर लो उसके लिए, ठीक है ना, और अगर बहुत ही ज्यादा मबगूज किस्म का बोझ है तुम्हें उस बंदे के साथ, और तुम जो है वो बिल्कुल यानी टोटली गिवन अप ऑन हिम, ठीक है, तो भाई अल्लाह के हवाले कर दो मामले को, लेट अल्लाह हैंडल इट, ठीक है ना, और अल्लाह ताला से बेहतरीन हैंडल करने वाला तो कोई हो ही नहीं सकता, अल्लाह ताला से बेहतरीन नहीं बल्कि अल्लाह ताला के पास कंप्लीट अथॉरिटी है, कंप्लीट हर चीज मौजूद है हैंडल करने के लिए, ठीक है, तो ये बहुत आसान और सादा सा हल है, ठीक है, जिहाद की ममानियत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जिहाद जो है वो बगैर हुक्म के नहीं होता है। ठीक है, चले किसी को कोई सवाल है अगर तो पूछ लिए, वरना क्लास का टाइम मुकम्मल हो चुका है। तो ठीक है। करते हैं वाखर दावान। अच्छा एक मिनट तो सुन, अगर कोई आपका हक ले ले तो हमें क्या करना चाहिए? हक ले ले जो है ना, इसी को जुल्म करना कहते हैं, ठीक है ना। सिर्फ थप्पड़ मार देना जुल्म नहीं होता, ठीक है, बल्कि किसी का हक जो है वो ले लेना, कोई चीज आपसे छीन लेना, या जो आपको देना चाहिए था वो नहीं देना, ये यही जुल्म, और ये जुल्म की एक बड़ी यानी यानी शक्ल है, ठीक है ना। तो इस वजह से जितनी डिस्कशन अभी इतनी देर तक हुई है ना यहाँ पर, उस वो इसके बारे में भी है। ये कोई अलग से चीज नहीं है कि ये मतलब ये कोई ये जुल्म है, आपका हक ले लिया उसने, ठीक है। तो हमें अल्लाह के हवाले करना चाहिए। वही बात है कि अगर आप यानी ज्यादती में मुबतला हुए बगैर, ठीक है ना, उससे वो चीज वापस ले सकती हैं, तो आप वापस ले लें, ठीक है ना। और इस मामले को जो है वो बड़ा ना करें, इसको इसको यानी एक एक, एक फसाद ना बनाएं इसको। अगर वापस ले सकती हैं वापस ले लें, ठीक है ना, लेकिन फसाद का आज का चांस नजर आ रहा है, या जो है वो ये है कि जी कहीं ऐसा ना हो कि मैं जो हूं ना वो अगर बदले में जो है ना उसकी और ज्यादा बड़ी चीज छीन लूंगी, ठीक है ना, और मुझसे जो है वो ज्यादती हो जाएगी, ठीक है। तो अल्लाह के हवाले करना है इसको मामले, ठीक है ना। वैसे तो आम हालात के अंदर ये होता है कि जो अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर जो अथॉरिटीज बनाई हैं, जैसे आपके घर के अंदर कोई बड़ी शख्सियत है, या वैसे कोई और इस किस्म की ऐसी पंचायत वगैरह है, या कोई जरगा वगैरह है, तो अपने मामले को उसके पास ले जाएं और वहीं से इस मामले को सॉल्व करवाएं, खुद से जो है ना वो लड़ाई झगड़े के अंदर ना पड़े, क्योंकि फिर वो एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है तो फिर अल्लाह का सिस्टम तो है ही, ठीक है। अगर कोई आप पर इल्जाम लगाता है बार बार वही अमल करे, तो उससे क्या करें? अगर आपके ऊपर कोई बार बार इल्जाम लगाता है, भाई अब ये सारी वही बातें हैं ना, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर यानी मुख्तलिफ शक्लें हैं ना ये जुल्म की। किसी के ऊपर इल्जाम लगाना ये भी जुल्म है, हालांकि उसने वो गलत काम नहीं किया था, तो इल्जाम लगा रहे तो अब ये भी तो जुल्म है ना। तो इस जुल्म के साथ भी वही मामला है कि भाई यानी आप उसके ऊपर भी वही इल्जाम लगाना शुरू करते हैं, नहीं ये तो नहीं कर सकते, उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। क्यों? इसलिए कि इल्जाम लगाना झूठ है, ठीक है ना। तो उसने जो झूठ बोला है ना, आपके ऊपर इल्जाम लगाया है, तो उसने सिर्फ आपका हक नहीं मारा, बल्कि उसने अल्लाह का भी हक मारा, क्योंकि झूठ भी बोला उसने और आपके ऊपर इल्जाम लगाया, ये एक अलग जुल्म किया उसने आपके ऊपर, ठीक है। अब आप काउंटर इल्जाम लगा करके अपना बदला नहीं ले सकते, क्योंकि उसने अल्लाह का भी हक मारा है, और आपने किसी पर इल्जाम लगा करके आपने भी अल्लाह का हक मार दिया, तो ये काउंटर इल्जाम इसका तरीका नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो इल्जाम का या तो आप अच्छे हसीन तरीके से अपना दिफा कर लें कि ऐसा तो नहीं था, अब आप जो कह रहे हैं वो मतलब आई डोंट नो हाउ, कैसे आप जो है वो ये चीज कह रहे हैं, क्या दलील है आपके पास, ठीक है ना। या अगर आप उससे इस किस्म का अच्छे तरीके से डिस्कशन नहीं कर सकते, अल्लाह के हवाले, ठीक है ना, अल्लाह ताला को उसका जवाब देने दें। अल्लाह ताला बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि कैसे किसी इल्जाम लगाने वाले के से आपकी हिफाजत भी करनी है, और कैसे जो है ना वो उसको जवाब भी देना है उसका, और उससे अपना रवैया भी पहले जैसा रखना चाहिए। क्या सबर करें, खैर ये तो हो गया, यानी कोई कुछ भी करे बेहतर यही है कि अपना मामला अल्लाह के हवाले करें और सबर करें। जी बेहतर यही है भाई, कुरान मजीद के भी अल्फाज यही है ना, खैरुन लिस्साबिरीन, खैर का मतलब होता है ज्यादा बेहतर, ठीक है। तो इस वजह से सबर करना तो बेहतर है ही, एब्सोल्यूटली, ठीक है ना, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस सबर बेहतर ही है, ठीक है ना। अब लेस देन बेहतर के ऊपर एक डिस्कशन हो सकती है कि लेस देन बेहतर वाली चीज जो है ना वो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, या कैसे करनी चाहिए, ठीक है ना, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। लेकिन इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है कि सबर जो है वो सबसे बेहतर चीज है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मर्दों में भी के मुस्लिम मजलूम को किस सिचुएशन में बदला लेना चाहिए और किस सिचुएशन में सिर्फ दुआ पर इत्तेफाक करना होता है, और मजलूम क्या बुजदिली कब कहाता, कब कहलाता है, बुजदिल कब कहलाता है, मजलूम क्या बुजदिली कब कहलाता है। ये जो उन्होंने सवाल किया ना कि किस सिचुएशन में बदला लेना चाहिए और किस सिचुएशन में बदला ये दुआ पे इत्तिफा करनी चाहिए, तो इसके लिए तो भाई इसका जवाब ये है कि सिचुएशन बताएंगे ना तो उसके ऊपर फिर इसका जवाब मिल सकता है, क्योंकि आपने अब दुनिया के अंदर नंबर ऑफ सिचुएशंस आर इनफिनिट, इनफिनिट नंबर ऑफ सिचुएशंस है ना, तो अब मैं आपको इनफिनिट नंबर ऑफ सिचुएशंस के इनफिनिट नंबर ऑफ जवाब दे सकता हूँ उस वक्त, ठीक है ना, तो इस वजह से सवाल भी आपका सही नहीं है, तो जवाब कैसे मिलेगा। शेर साहब अगर किसी बड़े से या काजी से अपने साथ जुल्म का फैसला करवाए, हाँ तो काजी के पास जो है वो जुल्म का फैसला करवाना, तो वो भी बड़ों के मशवरे से कि भाई हाँ भी काजी के पास जाना जो है वो इस वक्त जरूरी है, तो और उसकी दूसरी हिकमतें, दूसरी रीजंस भी हो सकती हैं, जरूरत भी हो सकती है, ठीक है, तो जब बड़ों के मशवरे से आप ये इस तरह का अमल लेते हैं तो इसके अंदर बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं होती, ठीक है ना, और अगर बड़ों का मशवरा नहीं भी था लेकिन आपके पास वो तो है ना, ठीक है, यानी शरी जवाज है काजी के पास जाकर के फैसला करवाने का, वो कर सकते हैं, हाँ लेकिन काजी के पास जाकर के ऐसा ना हो कि अच्छा जी अब जब जब केस का फैसला मेरे हक में हो ही रहा है तो चलो मैं ऊपर से दो चार और भी क्लेम्स कर लेता हूँ जो कि जेन्युइन क्लेम्स नहीं है, तो फिर आप खुद जालिम बन जाएंगे, ठीक है। चले क्या उससे ताल्लुक खत्म करते हैं, नहीं हर वक्त हर बंदे से इस तरह से ताल्लुक नहीं, बहुत सारे लोग आजकल तो मियाँ बीवी एक दूसरे को इतना जुल्म कर रहे हैं तो फिर तो बस जुल्म किया और ताल्लुक खत्म है ना, इधर से तलाक उधर से खुला, तो फिर तो कोई एक घर भी नहीं बचेगा मेरे ख्याल में, ठीक है, तो ऐसे ताल्लुक इतनी आसानी के साथ और इतना तेजी के साथ ताल्लुक खत्म करने वाली बात नहीं हो सकती ना। इफ योर हस्बैंड कीप्स ऑन अब्यूजिंग योर फादर, कैसे इस पे सबर करें, हस्बैंड कीप्स ऑन अज्यूमिंग अब्यूजिंग योर फादर, कैसे इस पे सबर करें, कैसे सबर करें, सबर करने का तो भाई तरीका होता है कि मतलब सबर ये हाउ वाला सवाल नहीं है, बल्कि ये सवाल है कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल, ये वाला सवाल है आपका मेरे ख्याल में, ठीक है ना, तो हाउ वाला सवाल तो भाई वो तो तरीका सबर करने का कोई ये नहीं होता कि आप 2 रकत तहज्जुद की नमाज पढ़ें तो इससे सबर हो जाता है, तो हाउ सबर का तरीका तो कोई यानी चुप करके बैठना और अल्लाह के हवाले करना, यही दो चीजें कह सकते हैं हाउ के जवाब में, और हाउ कैन इट बी पॉसिबल, तो हाउ कैन इट बी पॉसिबल का जवाब ये है कि यस इट इज पॉसिबल है ना, मैनी थिंग्स आर पॉसिबल दैट वी थिंक आर नॉट पॉसिबल, तो इट डिपेंड्स यू नो वी नीड टू लर्न, वी नीड टू यू नो अंडरस्टैंड एंड सीक नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है, तो जो चीजें इम्पॉसिबल लगती हैं तो उसके पॉसिबल होने के तरीके होते हैं, लेकिन तरीके हमें पैदाइशी तौर पर कोई ना, हमें अपने सिस्टम में सारी नॉलेज लेकर के हम दुनिया में आए हुए होते हैं, और ना जो है वो जब हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है अल्लाह ताला की तरफ से वही आ जाती है तो हमें उसका तरीका सीख पता चल जाता है, नहीं दोनों चीजें नहीं होती, तो तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज यह है कि सीखना पड़ता है इल्म वालों से, और हमारे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमारे परवरदिगार ने हुक्म फरमाया फसअलू अहले ज़िक्र, इल्म वालों से तुम सवाल करो, पूछो, सीखो, ठीक है ना, जो चीज तुम्हें पहले से पता नहीं है, पहले तो से तुमने नहीं सीखी हुई है तो भाई अब जा करके सीखो, ठीक है, अब हम इस हुक्म के ऊपर अमल नहीं कर रहे तो हम अल्लाह के नाफरमान बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, अल्लाह के नाफरमान बन रहे हैं, ठीक है, तो दूसरों की जुल्म और ज्यादती से पहले हमें अपनी जुल्म और ज्यादती की फिक्र करनी चाहिए कि हम भी तो जुल्म कर रहे हैं जब अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ना। उलमा का हक हम लोग के साथ है पर कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं हो तो क्या करना चाहिए, कोई मानने के लिए तैयार नहीं हो तो क्या करना चाहिए, अब मेरे ख्याल में ना वह आप लोगों की भी बस हो गई है और मेरी भी बस हो गई है, अब ऐसे ऐसे सवाल आएंगे कि फिर हम 2 घंटा बैठे रहें तो भी उनके जवाब नहीं हो सकेंगे, अगर वो रिलेटिव हो तो उससे क्या करना चाहिए, अब अगली क्लास में कम से कम इन सवालों को रखने, वरना फर्स्ट आंसर जस्ट नाउ सेकेंड पार्ट मजलूम क्या बुजदिली भी कहलाता है, नहीं मजलूम जो है ना वो बुजदिली नहीं, बुजदिली जो है वो एक अलग चीज आती है और सबर और साबरीन जो है ना ये एक अलग कैटेगरी होती है, तो इन दोनों के दरमियान फर्क करना जो है वो एक डिटेल थोड़ी सी डिस्कशन हो सकती है, इस वजह से अभी उसको रहने दें, ये भी शैतान का एक बड़ा हरबा होता है कि जहां पे सब्र की जरूरत होती है ना, तो वहां पे सब्र ना करने के लिए वो ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ओए अगर तुमने सब्र कर लिया तो तुम तो डरपोक, तुम तो बुजदिल, ठीक है ना। तो अब शैतान के इस कंफ्यूजन से बचने के लिए अल्लाह ताला ने शीन से जो है वो दूसरी तरफ का भी एक सिलसिला बनाया हुआ है ना, तो उस दूसरे वाले शीन से यानी शेख साहब से जो है ना फिर पूछ लेना चाहिए कि जी मुझे जो है वो यहाँ पे मेरे लिए बुजली है या जो है वो मेरा जो चुप करके बैठना जो है वो सब्र है, ठीक है ना। तो वो शेख साहब ही बताएंगे भाई, वरना शैतान साहब तो आपको फंसवाने के लिए बुजली का ताना दे करके आपको खूब आपसे करवाएंगे मजे मजे के काम, ताकि आप भी सारी जिंदगी लगे रहे इसके अंदर, ठीक है। बुराई से दूर रहने के लिए क्या बुरे लोगों से ताल्लुकात खत्म करने चाहिए या सिर्फ दूर रहना भी सही है? कोई सोहबत का असर होता है, और क्या हमेशा सोहबत का असर होता है? कोई अच्छे लोगों की पहचान भी ऐसी ही होती है कि वो कैसे सोहबत में है? कोई इल्जाम लगाए और फिर कुछ अरसे बाद माफी मांगे मांगना चाहे तो क्या करना चाहिए? आसान जो सवाल है आपका, इल्जाम लगाए और फिर वो जब माफी मांग रहे हैं ना, तो माफी मांगने वाले को माफ कर देना जरूरी होता है, ठीक है ना। माफी मांगने वाले को माफ कर देना जरूरी होता है, अगर नहीं माफ करेंगे ना तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी खतरनाक बात करी है, बड़ी खतरनाक बात करी है कि अगर कोई अपने गलती के ऊपर माफी मांग रहा है और तुम माफ नहीं करोगे ना, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि कयामत के दिन मुझसे आके ना मिले, ठीक है ना। माफी मांगने वाले को माफ नहीं कर रहा, कयामत के दिन मुझसे आके ना मिले, ठीक है। और बाकी जो आपने इतना लंबा सोबत वोबत के बारे में जो सवाल किया है, तो भाई जो ताल्लुकात खत्म करने के नहीं होते, जिनको अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया है, तो उनसे बस थोड़ी सी दूरी इख्तियार करनी काफी होती है, ठीक है ना। उनको तोड़ना जो है ना वो अल्लाह ताला की हुक्म की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, और जो ताल्लुकात जो हैं वो अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है उनको जोड़ने का, ठीक है ना, जैसे दोस्तियां यारियां, और वो जो है वो आपके साथ बुरा कर रहे थे और कोई अल्लाह का हुक्म नहीं है कि तुमने उन दोस्तों को जो है ना वो अपने गले से लगा करके रखना है, तो भी खत्म करें उस ताल्लुक को, और नेकों के साथ बस ताल्लुक बनाए, अच्छे लोगों के साथ ताल्लुक बनाए। और अच्छे लोगों की पहचान क्या होती है? अच्छे लोगों की पहचान जो होती है उसके लिए सीखना पड़ता है ना। तो कोई ना कोई तो आपने अच्छा दुनिया में देखा होगा, या किसी का आपके जानने वाले का किसी अच्छे के साथ वास्ता पड़ा होगा, तो तलाश करें ऐसे अच्छे लोगों को, लोगों से पूछ पाछ करके, वर्ड ऑफ माउथ से, ठीक है ना। किताबों के अंदर अच्छे लोगों की जो सिफात लिखी हुई होती हैं उनको भी जरा मुताले में रखें, ठीक है ना, और वर्ड ऑफ माउथ से लोगों से पता करें कि हाँ भी कोई अच्छे लोग हैं दुनिया के अंदर, या सारे मर गए, सारे खत्म हो गए, तो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह आपको अच्छे लोग मिल जाएंगे, ठीक है ना। तलाश करना पड़ता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम उस दौर में दाखिल नहीं हुए हैं कि जिसके अंदर अच्छे लोग दुनिया से उठा लिए गए। वो भी दौर आएगा दुनिया में, लेकिन वो बिल्कुल ही ईसा अलैहि सलाम और दज्जाल वज्जाल के दौर के बहुत बाद की बात है वो, तो अभी तो दज्जाल वाला दौर मशाइख फरमा रहे हैं ना, तो उस वजह से मिल जाएंगे इंशाल्लाह आपको, ठीक है। बस चले, बहुत देर हो गई, वो आखिर दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।